प्रॉब्लम्स को बाएं, हैप्पीनेस को हाय। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज इंसान काफी प्रगति कर चुका है, तरह तरह की मशीनें आयात कर चुका है। यह मशीनें चाहे रोबोट हो या कंप्यूटर, इसलिए बनाई जाती हैं ताकि मनुष्यों का काम आसान कर सकें। या तो यह भी कह सकते हैं कि यह मशीनें मनुष्य की प्रतिलिपि हैं। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह होता है। तो आइए इसी विषय पे चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति के साथ। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति।
तो सिस्टर, ये मनुष्य और कंप्यूटर, इनमें क्या समानताएं हैं? हम क्यों कहते हैं कि कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह है?
अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी मृत्यु के बाद इनके ब्रेन को टेस्ट किया गया एक लेबोरेटरी में। अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को कंपेयर किया गया एक दूसरे इंसान के ब्रेन के साथ, और रिजल्ट्स क्या थे? दोनों ही ब्रेन स्ट्रक्चरली एक समान ही पाए गए थे। 0.001% डिससिमिलैरिटी पाई गई, माना उनकी भिन्नता बहुत ही कम थी। तब सवाल यह उठा कि अगर ब्रेन एक समान है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जीनियस हो, इतना बड़ा साइंटिस्ट हो, इतने बड़े बड़े आविष्कार और इन्वेंशंस करता हो, जबकि दूसरा उसका ब्रेन सामान्यतः ही चलता हो, रोजमर्रा की जिंदगी में ही चलता हो। तो इतनी भिन्नता क्यों है जब स्ट्रक्चरली वो दोनों सिमिलर हैं?
सिस्टर तृप्ति, अब तक हमने ये बातें की हैं कि मन है जो ब्रेन को चला रहा है, उसकी पीछे की जो रनिंग ऑर्गन है वो मन है ब्रेन के पीछे का। तो अगर ये दोनों ब्रेन समान भी हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर मन स्ट्रांग है तो वो ब्रेन को अच्छे से चलाता है।
बिल्कुल सही। और जब हम दो अलग इंसानों की, दो अलग ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करते हैं, और अगर हम एक 20 साल के या 25 साल के या 30 साल के इंसान की बात करें, उसके मन और उसके ब्रेन को देखें, और एक छोटी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची की बात करें, उसके ब्रेन और उसके मन को देखें, और अगर हम इन दोनों के ब्रेन को कंपेयर करने की कोशिश करें, या फिर इन दोनों के मन को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ईला आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसका ब्रेन और मन ज्यादा विकसित होगा?
बड़े इंसान का।
अभी मुझे लगता है आपने लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल किया। लॉजिक के अनुसार आप बिल्कुल सही हैं। जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा माइंड का और ब्रेन का। पर क्वेश्चन यह है, एक है डेवलपमेंट और दूसरा है माइंड का यूसेज और ब्रेन का यूसेज। तो अगर हम इस 20 साल के या 25 साल के इंसान को अगर कहीं फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, तो आपको क्या लगता है,
अगर 20 साल के इंसान को कोई दूसरी लैंग्वेज सिखानी है तो उसको कोर्स करने होंगे, ट्रेनिंग लेनी होगी, और तब कहीं जाके 1-2 महीने बाद उसको कुछ सेंटेंस बोलना आ सकता है?
और अगर हम छोटे बच्चे को देखें, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे को देखें, और उसको हम जो अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं वह तो उसके लिए पूरी तरह से ही फॉरेन लैंग्वेज है, पर तुरंत बच्चा ग्रास्प कर लेता है, तुरंत वह बोलने लगता है, उसे कोर्स करने की जरूरत नहीं, उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, पर वह जैसे जैसे उसे सिखाया जाए वह वैसा वैसा बोलने लगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि छोटा बच्चा वह कितनी आसानी से लैंग्वेज सीखता है, और हम जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही कोई भी दूसरी भाषा सीखना मुश्किल होता जाता है। तो जरा अटपटा सा तो लगता है, क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, जैसे आपने कहा,
जैसे जैसे उम्र बढ़ी ब्रेन बढ़ना चाहिए, पर यह सत्य नहीं है।
हाँ, ब्रेन की भी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, मन की भी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एक है बढ़ना, शायद बढ़ भी रहा हो, और दूसरा है उसको यूज करना। तो उसी प्रकार हम यह देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है वह ज्यादा अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करता है, क्रिएटिव ब्रेन का इस्तेमाल करता है। अभी उसका लॉजिकल ब्रेन मना लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल वह ज्यादा नहीं करता, इसलिए उसको कोई भी नई बात अगर सिखाई जाए तो बहुत आसानी से ग्रास्प करता है। हम देखें छोटे बच्चे को हम सब सिखाते हैं, बोलना, उठना, चलना, सोना, खाना, पीना, और उसे जैसे जैसे सिखाया जाए वो वैसा वैसा एडॉप्ट करने लगता है, ग्रास्प करने लगता है, क्योंकि उसका क्रिएटिव ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसका जो मन होता है वह उस क्रिएटिव ब्रेन का इस्तेमाल करता है, यूज करना जानता है। और हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं क्या होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन तो डेवलप होने लगता है, पर यह जो राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है, यह कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगता है।
इसीलिए सिस्टर तृप्ति, शायद बच्चों को कुछ भी सिखाना आसान होता है, उनको नई भाषा सिखा दो, कुछ नया ज्ञान दे दो, वो आसानी से सीख जाते हैं, पर जितना ही उम्र बढ़ती जाती है नई भाषाएं सीखना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है।
नई भाषाएं ही नहीं, कोई नई चीज भी हो वह बड़ेपन में उसे ग्रास्प करना जरा सा कठिन लगता है और छोटेपन में उसे ग्रास्प करना ज्यादा इजी लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ब्रेन और मन को। तो हमारा ब्रेन कुछ और नहीं, एक कंप्यूटर है, एक रूहानी कंप्यूटर है। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं?
कंप्यूटर में इनपुट होता है ताकि आप कुछ फीड करें उसे, फिर उसमें प्रोसेस होती है चीज़ें, उस इनपुट का यूटिलाइजेशन होता है और फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है उसका।
ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी एक कंप्यूटर है, इसके भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कान, नाक, आँख, मुंह, हाथ, मन, स्पर्श, ये सब कुछ और नहीं इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कंप्यूटर के पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है इनपुट देने के लिए। और जब हम कहते हैं प्रोसेसिंग की, जैसे इला आपने कहा, तो जैसे कि कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी प्रकार हमारे यहाँ ब्रेन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और फिर जैसे कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर जिस पर हम कुछ इसका रिजल्ट देख सकते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और इन आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा रिजल्ट देखा जाता है हमारे बोल और कर्मों के द्वारा, और इसका प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर एक बहुत ही वंडरफुल यूनिट है जिसे कोई भी ह्यूमन बीइंग रच नहीं सकते, बना नहीं सकते।
तो सिस्टर तृप्ति, जिस तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह क्या हमारे शरीर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है?
जब हम ब्रेन की बात करें तो यह हार्डवेयर है, यह शरीर हार्डवेयर है, और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माना ऐसे कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ऐसे कुछ गतिविधियां होती हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इनवॉलेंट्रीली चलती रहती हैं, हमें न जाने भी उनकी कार्य पद्धति चलती रहती है। उसी प्रकार इस ह्यूमन कंप्यूटर में, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो सारी प्रक्रिया जो अपने आप चलती रहती है, जैसे डाइजेशन होना खाने का, हार्ट बीट हार्ट का धड़कना, बोन्स का एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहना, मसल्स का बोन्स को सपोर्ट करना, ब्लड का सर्कुलेशन, हवा का रेस्पिरेशन, तो जैसे ये सारी बातें हमारे शरीर में इनवॉलेंट्रीली चलती रहती हैं, तो यह क्यों चलती है? क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में फेड है, इस ब्रेन में यह ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया हुआ है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात निकलती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर भी हम स्टोर करते हैं, लोड करते हैं, ताकि उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम इस कंप्यूटर को जैसा चाहें वैसा यूज करें। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्रेन रूपी कंप्यूटर में लोडेड है, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है प्यूरिटी का सॉफ्टवेयर, हैप्पीनेस का सॉफ्टवेयर, लव, पीस और नॉलेज एंड पावर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जो ओरिजिनली इस कंप्यूटर में लोड होकर आते हैं। और ये ओरिजिनली कब लोड होते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्मतः ही ये सारे सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर में लोडेड होते हैं। इसलिए देखते हैं बच्चा हमें कितना प्यारा लगता है, उस बच्चे में कितना अट्रैक्शन लगता है। वो इसलिए लगता है कि उसके मन में और उसके ब्रेन पर यह सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, प्यार से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ सॉफ्टवेयर लोडेड होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एनवायरनमेंट के संपर्क में आने लगता है, तो क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में वायरसेस लगने लगते हैं। तो जो शांति थी उसे गुस्से का वायरस लगने लगता है। और जितनी बड़ी वायरस की फाइल होगी उतना ही ज्यादा वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर करप्ट होता जाता है। तो उसी प्रकार जो प्रेम का सॉफ्टवेयर था उस पर मोह रूपी वायरस अटैक कर देता है। तो इस प्रकार जो हम पहले शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण और खुशी से संपन्न थे, अब क्या होता है, धीरे धीरे अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, पीड़ा, दुख, इस प्रकार के वायरस हमारे कंप्यूटर में लगने लगते हैं और हमारा जीवन धीरे धीरे दुखी होने लगता है। जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती नजर आने लगती हैं। तो इस प्रकार जरूरत है अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को बचाए रखने की। किससे बचाना है? वायरस के अटैक से।
तो सिस्टर रुक्ति, तो ये जो सुख है, शांति है, प्रेम है, ये तो हमारे बॉडी के सॉफ्टवेयर हो गए, और इनमें जो वायरस का काम कर रहे हैं वो है दुख, घृणा, ईर्ष्या। तो जैसे कंप्यूटर में तो वायरस लगता है तो हम एंटीवायरस चला देते हैं, तो हमारी अगर बॉडी में ये दुख का, अशांति का और क्रोध का जो वायरस है, तो उसके लिए क्या हम एंटीवायरस चला सकते हैं कोई?
तो जो कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस कैसे काम करता है? वह वायरस को अंदर घुसने नहीं देता, पर वायरस के घुसने के सिम्टम्स पता चलते ही उन सिम्टम्स को जड़ से निकाल फेंकता है। तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा एंटीवायरस सिस्टम है? हमारी अवेयरनेस, चेतना, ये जो हम कहते हैं ना, मन को अवेयर होना चाहिए, मन का अवेयरनेस लेवल हमें बढ़ाना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, यह कुछ और नहीं, यह एंटीवायरस सिस्टम है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी हम वायरस को जब अंदर घुसने देते हैं, हमारे ब्रेन की फाइल्स, सॉफ्टवेयर की फाइल्स करप्ट होने लगती हैं और आउटपुट में गुस्सा दिखने लगता है, आउटपुट में ईर्ष्या दिखने लगती है। तब हमें पता चलता है कि अरे मुझे गुस्सा आ गया, मुझ में ईर्ष्या घुस गई। तो हम क्या कर रहे हैं, वायरस लगने के बाद और जब हमारे बोल और कर्म में आउटपुट दिखे कि आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में यह वायरस लग चुका है, जब आउटपुट में देखते हैं तब हम अवेयर होते हैं, तब हम सचेत होते हैं, ओह मुझे गुस्सा आ गया। कहते भी है ना, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था पर न जाने कैसे आ गया। मना आ जाने के बाद, काम के हो जाने के बाद हम अवेयर होते हैं, ओह मुझसे यह काम हो गया। तो अब हमें सब कुछ हो जाने के बाद नहीं जागना है। पुलिस का काम है, एंटीवायरस का काम है कि चोर को, वायरस को अंदर घुसने ही न दे, उसके सिम्टम्स को देखें और सिम्टम्स को पहचान के ही वहां करेक्टिव एक्शन ले, उन सिम्टम्स को खत्म कर दे अंदर घुसने के पहले ही। तो यह जो क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, जो आउटपुट के रूप में दिखता है, इनके सिम्टम्स क्या हैं? इनके सिम्टम्स हैं नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। और हमने ये दो तरह के थॉट्स देखे हैं, जो हमें यह पता चला है कि ये जब थॉट्स जेनरेट होते हैं, तब बीटा वेव्स जनरेट होती हैं। नॉर्मल बीटा वेव्स नहीं, पर नेगेटिव थॉट्स के समय वेरी हाई बीटा वेव्स और वेस्ट थॉट्स के समय हाई बीटा वेव्स। माना ये दोनों तरह के थॉट्स हमारे लिए हानिकारक हैं। तो जैसे ही यह सिम्टम दिखाई देने लगता है कि मेरे मन में शायद नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स शुरू हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स माना किसी के लिए ऐसा विचार जिसमें क्रोध की भावना हो, किसी के लिए ऐसा विचार जिसमें ईर्ष्या हो, द्वेष हो, विचारों के लेवल पर, थॉट्स के लेवल पर, और वेस्ट थॉट्स माना पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की बातें। हम काफी समय पास्ट की मेमोरीज में भी स्पेंड कर देते हैं, ऐसा हुआ पर अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वैसा कर देती, अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा हो जाता, पर जो हो गया है सो हो गया है, उसे अब याद करके हम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और हाई बीटा वेव्स को जेनरेट कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे लिए वायरस है और इस वायरस को शरीर में घुसने के पहले ही थॉट के लेवल पर पकड़कर अवेयर होके कि यह थॉट गलत है, इस थॉट को पकड़कर वहीं से खत्म कर देना है और एक पॉजिटिव थॉट को जेनरेट कर लेना है। अगर हमारा अवेयरनेस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो एंटीवायरस की तरह काम करेगा जो बीमारी को अंदर घुसने ही न दे और हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन करता रहे और मन में शांति, प्रेम, आनंद, सुख, इन सब बातों का, इन सब फीलिंग्स को कोई टच न कर सके, ये सारे फीलिंग्स सदा ही कायम रह सके। तो जरूरत है अपने इस एंटीवायरस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की, अपने इस अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने की, और हमेशा चेक करते रहें कि मेरे विचार कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहे, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे, और जैसे कोई वेस्ट थॉट या नेगेटिव थॉट डिटेक्ट हो इस डिटेक्टिंग मशीन में, वैसे ही उस वायरस को पकड़कर वहीं हमें किल कर देना है, अंदर घुसने ही नहीं देना है।
तो सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि अवेयरनेस ही हमारी बॉडी का एंटीवायरस सिस्टम है जो सदैव चेक करता रहता है कि अगर जो थॉट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें चाहिए कि इस एंटीवायरस सिस्टम को हमारे शरीर में बढ़ाएं, अर्थात हमारे शरीर के अवेयरनेस को बढ़ाएं।
रिसर्च के अनुसार आजकल हम ह्यूमन बींग्स का जो माइंड में थॉट प्रोसेस चलता है यह ज़्यादा नेगेटिव होता है, ज़्यादा वेस्ट होता है, और रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, नंबर वन अगर क्वांटिटी होती है थॉट्स की तो वह होती है नेगेटिव थॉट्स की, नंबर टू अगर क्वांटिटी होती है तो वह होती है वेस्ट थॉट्स की, और अगर हम देखें भी तो या तो मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अशांति, किसी के प्रति कुछ बुरी बात, यह मन में चलती रहती है। अगर यह नहीं चल रही है तो जरूर कोई या तो बीती हुई बात मन में चल रही है या फिर आने वाले फ्यूचर की चिंता है, और हम बहुत कम प्रेजेंट में जीते हैं। अगर हम प्रेजेंट में जीने लगे तो आई एम श्योर यह जो नेगेटिव थॉट्स हैं और जो ये वेस्ट थॉट्स हैं यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में जीना ही पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स चाहते हैं तो जरूरत है प्रेजेंट में जीने की। और हम ये कंप्यूटर की बातें इतनी क्यों कर रहे हैं? क्या हम बैठ के यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं? आइडिया यह है कि हम अपने शरीर को जितना अधिक पहचाने, जितना अधिक इसके बारे में जाने, और अगर हम अपने आप को स्वयं चेक कर सकें और अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना हो वह ले सके इसके पहले कि बीमारी नासूर बन जाए। तो यह पूरी कोशिश है कि हम हमारी बॉडी जो कि एक कंप्यूटर की तरह है, हम कंप्यूटर के साथ उसको कंपेयर करके यह जानना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, सिर्फ शरीर ही नहीं हमारा मन कैसे काम करता है, ताकि मन की बीमारी पहले ही पता चल जाए और उसे वहीं मिटा दें और शरीर की बीमारी भी पहले ही पता चल जाए, इसके पहले कि वह नासूर बन जाए और हमारे लिए एक दुख का कारण बन जाए।
जैसा कि सिस्टर तृप्ति ने आज हमें बताया कि हमारा शरीर एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें इनपुट आता है और कंप्यूटर में आउटपुट आता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी विचारों का इनपुट आता है और कर्म रूपी आउटपुट होता है। तो अगर हम अपने विचार अच्छे रखेंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा रहेगा। अवेयरनेस एक एंटीवायरस की तरह हमारे शरीर में काम करता है, तो अगर हमारे शरीर में बुरा विचार आए तो उसे अच्छे विचार में परिवर्तित करता है। पर इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे अवेयरनेस को बढ़ाएं, उसको उन्नति पे जाने दें। आज ये जैसे कि सिस्टर तृप्ति ने कहा, हमने आज ये तुलना इसलिए की ताकि हम हमारे शरीर को एवं मन को पहचान पाए और कोई भी बीमारी शरीर या मन में घुसने से पहले ही, नासूर बनने से पहले ही उसका उपचार करें। हम आशा करते हैं आपको इस जानकारी से अत्यधिक अत्यधिक लाभ मिले। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। तो आज के लिए इतना ही, पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।
जो अपने आप को भूल जाता है उसकी जीवन क्या होती है? तो आज भी संसार में मैं कौन भूलने के कारण, शरीर भान में आने के कारण, देह भान में आने के कारण, इन पांच विकारों ने अशांति पैदा कर दी। अगर आप बॉडी कॉन्शियस यानी देह भान को छोड़ दो तो सेकंड में आप आत्मा अपने निजी शांत स्वरूप का अनुभव कर सके।
इस ब्रह्मकुमारी परिवार से करीबन 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से बचपन से ही ये ज्ञान मिलने के कारण मेरे जीवन में जो कलाएँ विकसित हुई है या को कुछ दैवी गुण आए हैं, जिसके कारण मैं मेरा आज का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे जीवन में पूरी तरह से सुख शांति है और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं एक खुश नसीब हूँ जो मुझे ये मार्ग मिला है, इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और खुद से सेटिस्फाई हूँ, परिवार से सेटिस्फाई हूँ।
वसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।
सूर्य हम सूर्य की किरणें,
सत्यम शिवम सुंदरम।
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है।
सत्यम शिवम सुंदरम।
शिव समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता,
शिव अनंत है जीवन मधुबन, शिव वसंत है।